हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 18 जून 2026, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि चतुर्थी है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1858 में आज ही के दिन वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शहीद हो गई थी। और आज के दिन को गोवा क्रांति दिवस के रूप में भी मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट। पंजाब चंडीगढ़ में आज 18 जून को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस के मौके पर बंद रहेंगे सरकारी कार्यालय। सरकारी छुट्टी का ऐलान किया आज ये, प्रशासन की तरफ से ऑर्डर भी जारी कर दिया है। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी, अगले 11 घंटों के अंदर देश के 13 राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट है। आगे जानेंगे पूरे मौसम समाचार विस्तार से। और खबर है, 38 साल बाद मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में होगा देश के राष्ट्रपति का आगमन। आज 18 जून से ही देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब 5 दिवसीय मध्य प्रदेश का दौरा करने जा रही, सुरक्षा व्यवस्थाएं भी कड़ी की गई। वहीं खबर है, भारी भीड़ को देखते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु सरकार ने बड़ा ऐलान किया। जन कल्याण शिविरों की अवधि एक दिन और बढ़ा दी है। जो कल लास्ट डेट थी 17 जून, उसको बढ़ाकर आज 18 जून कर दिया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज 18 जून को यूपी कानपुर आएंगे। यहां कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। और कानपुर में सीएम योगी आज गुरुवार को कैबिनेट बैठक भी करेंगे। अफसरों और विभागों के कार्यों की गहन समीक्षा होगी। वहीं उड़ीसा में अब आज से ही वापस स्कूल खुलने जा रहे हैं। ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त हो चुका है। और भारत के लिए एक अच्छी खबर ये है, होर्मुज रूट पार करके भारत पहुंच रहा एक और एलएनजी जहाज आज 18 जून को दहेज बंदरगाह पर पहुंचेगा ये। वहीं झारखंड के रांची जमशेदपुर नेशनल हाईवे 33 को भी 214 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात मिलने जा रही। आज 18 जून को भूमि पूजन होगा। और केंद्र सरकार की तरफ से देश भर में राशन के अनाज को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया। आज 18 जून से नियम पूरी तरह से बदल जाएगा। दरअसल भारत सरकार देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आज एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम यानी आधुनिक गोदाम की व्यवस्था शुरू करने जा रही है। अब AI और IoT तकनीक के माध्यम से, जो मतलब राशन के अनाज का भंडारण वगैरह होता है, उन गोडाउन को डिजिटली तरीके से सुरक्षित बनाया जाएगा। भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए ये तकनीकी सिस्टम शुरू किया जा रहा है। इसके और क्या क्या बेनिफिट होंगे देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 समिट के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से द्विपक्षीय वार्तालाप की। इस दरमियान पीएम मोदी बोले कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, तो ट्रंप बोले कि मोदी एक जबरदस्त नेता है, उनकी लीडरशिप में भारत हमेशा बड़ा रोल निभाएगा। ट्रंप और मोदी ने काफी देर तक बातचीत की। इस दरमियान ट्रंप ने पीएम मोदी की काफी तारीफ भी की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी को बताया शांत, संयमित और जबरदस्त। ट्रंप बोले कि मैं वैसा नहीं हूं। और ट्रंप ने एक और बड़ा वादा भी किया। वो बोले कि मोदी के रहते अगर भारत पर हमला हुआ तो हम मदद करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ये भी बड़ा बयान देखने को मिला। हालांकि इस मुलाकात के दौरान और G7 समिट में भी पीएम मोदी ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया, तो इस मुद्दे पर भी ट्रंप बोले कि मोदी अपनी शर्तें मनवाने में सख्त हैं। अभी हाल ही में आपको बताऊंगा, अमेरिका ईरान की जंग के दौरान कुछ भारतीय नाविकों की जहाज पर मौत हो गई थी हमलों के बीच। तो पीएम मोदी ने दुनिया के कई बड़े दिग्गज नेताओं के सामने ये होर्मुज में भारतीयों की मौत का मुद्दा उठाया। G7 समिट में पीएम बोले कि नाविकों की सुरक्षा ही हमारी पहली जिम्मेदारी है। G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी कई बड़े दिग्गजों से मुलाकात की। और मोदी से मुलाकात के दौरान ट्रंप बोले कि मोदी जबरदस्त नेता है, उनकी लीडरशिप में भारत हमेशा बड़ा रोल निभाएगा। ट्रंप ने कहा कि जब तक मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं, व्हाइट हाउस में भारत का दोस्त मौजूद रहेगा। तो भारत अमेरिका के बीच इन बातचीत से काफी अच्छे संबंध देखने को मिले। दोनों नेताओं के बीच काफी पॉजिटिव बातचीत हुई। वहीं दोस्तों, G7 समिट में पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की भी द्विपक्षीय बैठक हुई। इस दरमियान भी रूस यूक्रेन जंग समेत कई अहम मुद्दों पर दोनों नेताओं ने चर्चा की। वैसे अमेरिका इसराइल ईरान जंग पर एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये सामने आ रही है। देखिए खुद अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में पता चला कि जंग के बाद अब और ताकतवर हुआ ईरान। अब ईरान के पास ये पावर है कि वो जब चाहे होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकता है। इस वजह से दुनिया की तेल सप्लाई पर खतरा बढ़ने लगा है। वैसे तो आपको पता होगा, पिछले एक दो दिन से ये मीडिया रिपोर्ट्स और चर्चाएं चल रही कि अमेरिका और ईरान की जंग खत्म होने वाली है, समझौता हो चुका है। लेकिन अभी समझौते पर G7 समिट के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अभी समझौता पक्का नहीं हुआ है। ट्रंप ने फिर से ईरान को चेतावनी दी और कहा कि अगर हमें समझौता पसंद नहीं आया तो फिर से बरसाएंगे बम। क्योंकि ट्रंप जो ईरान के साथ समझौता किए हैं, इसको लेकर एक ग्लोबल रिपोर्ट सामने आ रही कि ईरान समझौते को ट्रंप अपनी जीत बता रहे हैं। लेकिन कई सारे पॉलिटिकल और डिफेंस एक्सपर्ट विशेषज्ञों का यह मानना है कि देखा जाए तो इस युद्ध में अमेरिका की रणनीतिक हार हुई है। ये अमेरिका के लिए एक तरह से आत्मसमर्पण करने जैसा है। यही वजह कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना कि इस समझौते पर डील पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है, ये फाइनल नहीं हुआ समझौता। अगर ईरान की राजधानी तेहरान ने हमारी शर्तें नहीं मानी तो फिर हम वापस बम बरसाएंगे। और ट्रंप ने यह भी कहा कि अगले एक दो दिन में होर्मुज रूट पूरी तरीके से खुल जाएगा। देर रात ट्रंप का एक और बयान देखने को मिला। डोनाल्ड ट्रंप ये भी बोले कि ईरान में अब सत्ता परिवर्तन हो चुका है और हमने टारगेट से ज्यादा लक्ष्य हासिल किया। अब 60 दिन में अगर ये समझौता फाइनल नहीं हुआ तो हम फिर वापस बम बरसाएंगे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लेटेस्ट बयान बयानबाजी देखने को मिल रही है। वैसे इस जंग की वजह से ट्रंप को भी भारी भरकम नुकसान हुआ। देखिए, अमेरिका ने ईरान जंग में तकरीबन हर मिनट 6 करोड़ रुपए खर्च किए। अमेरिका को इस जंग की वजह से हर सेकंड 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। रोजाना करीब 9400 करोड़ रुपए खर्च किए अमेरिका ने, और 107 दिन जंग चलने के बाद भी मुसीबत अभी टली नहीं है। इस जंग में अब तक अमेरिका 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा खर्च कर चुका है, यानी अमेरिका को भी काफी भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा इस जंग की वजह से, राइट। और G7 समिट के दौरान एक बड़ी साजिश भी देखने को मिली। देखिए, फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोकने की साजिश की गई। हालांकि फ्रांस पुलिस ने इस साजिश को नाकाम कर दिया और पुलिस ने उन खालिस्तानियों को अरेस्ट भी कर लिया जो G7 समिट के दौरान पीएम के काफिले को घेरने वाले थे। और G7 समिट के बीच एक वाकया देखने को मिला। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि उन्होंने एक महीने से सिगरेट नहीं पिए, वो सिगरेट छोड़ चुकी हैं, नींद भगाने के लिए अब कॉफी पीती हूं। जब दिग्गज नेता आपस में बातचीत कर रहे थे तो माइक पर उनकी ये सिगरेट बातचीत भी रिकॉर्ड हो गई। तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय मंच का माहौल चल रहा। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। अगला अपडेट देखिए दोस्तों, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है हमारे देश में। 6.5 करोड़ से भी ज्यादा बुजुर्गों के पास दवाई खरीदने के भी पैसे नहीं है। 11 करोड़ लोग अभी मौसम की मार झेल रहे हैं, जिसमें ज्यादातर बुजुर्ग हैं जो जलवायु संकट की वजह से गंभीर मार झेल रहे हैं। और तकरीबन 6.5 करोड़ बुजुर्ग तो ऐसे हैं जिनके पास दवाइयां भी नहीं खरीद सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 78% बुजुर्गों ने पिछले 3 साल में कम से कम एक जलवायु संबंधित खतरे का सामना किया है। चलिए खबर देखिए, हरियाणा राज्य में अब शिकायत दर्ज होते ही तुरंत आपको FIR की कॉपी मिलेगी। 33 गृह विभाग सेवाओं की समय सीमा तय कर दी है हरियाणा सरकार ने। वहीं उत्तर प्रदेश में छात्रों को अब स्कूल यूनिफॉर्म, जूते, मोजे के लिए 1200 रुपए मिलेंगे। अगले महीने 1 जुलाई से यह धनराशि ट्रांसफर करना शुरू कर देगी यूपी की योगी सरकार। और खबर है, टेलीग्राम को कोर्ट से राहत नहीं मिली, आज इस मुद्दे पर फिर से सुनवाई होगी। दरअसल अभी नीट एग्जाम को लेकर आपको बताऊंगा, सरकार ने फैसला लिया टेलीग्राम पर टेम्परेरी ब्लॉक लगाने का। तो टेलीग्राम ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, क्योंकि भारत में कुछ समय तक के लिए बैन रहने वाला टेलीग्राम ऐप। तो अब टेलीग्राम बैन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा। अपनी याचिका में टेलीग्राम के CEO बोले कि पेपर लीक करने वालों की जगह भारत के 15 करोड़ यूजर्स को सजा मिल रही है। तो टेलीग्राम कंपनी का कहना कि इसको बैन ना किया जाए ऐसा। तो अभी इस मामले पर वापस सुनवाई होगी, देखते हैं कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। फिलहाल 22 जून तक के लिए टेलीग्राम पर रोक लगाने का फैसला किया नीट एग्जाम को लेकर, क्योंकि 21 जून को नीट का री एग्जाम होने वाला है। लेकिन इसकी भी कानूनी लड़ाई अभी भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट अगले महीने जुलाई में ये नीट पेपर लीक के मुद्दे पर वापस सुनवाई करेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, अब UK यानी ब्रिटेन की विस्की, दारू और कारें वगैरह भारत में 27 दिन बाद आपको सस्ती मिलेगी, क्योंकि भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगले महीने 15 जुलाई से हो जाएगा। दोनों देशों के बीच फाइनल समझौता हो चुका है, ऑफिशियली सोशल मीडिया पोस्ट में भी अनाउंस कर दिया गया है। तो अभी G7 समिट में भी PM मोदी ने ब्रिटेन के PM से मुलाकात की। फाइनली 15 जुलाई से भारत ब्रिटेन दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो जाएगा। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। भारत में खास करके टेक्सटाइल और लेदर एक्सपोर्ट करने वाले व्यापारियों को बड़ा फायदा होगा इस समझौते से। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, बिहार में अब बंद होंगे डबल मीनिंग और जाति सूचक वाले गाने। और इस संबंध में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट सरकार की तरफ से सभी जिलों के DM और SP को सख्त निर्देश भी जारी कर दिया। देख सकते बिहार सरकार के कला और संस्कृति विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया, क्योंकि कई सारे गाने और इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं जो अश्लील होते हैं लेकिन डबल मीनिंग वाले होते हैं, राइट। तो अब बिहार में इस तरह के गाने बजाने पर सख्त एक्शन होगा। संस्कृति मंत्रालय ने DM SP को लेटर भी भेजा है। और वहीं देखिए दोस्तों, बिहार में सैटेलाइट टाउनशिप की लैंड पर भी सम्राट कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया, अब बेच सकेंगे जमीन। इस बारे में भी ये नया नियम लागू कर दिया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, LPG ग्राहकों के लिए एक जरूरी अपडेट तो ये आ रहा कि 30 जून तक अगर ग्राहकों ने EKYC नहीं करवाई तो जिन लोगों को सब्सिडी योजना का लाभ मिल रहा अभी वो नहीं मिलेगा, फिर बंद हो जाएगा। तो इस महीने जून में लास्ट डेट है, तब तक आप EKYC करवा लें। सरकार की तरफ से सभी LPG कनेक्शन वालों को ये नोटिस दिया गया। दूसरा, सरकार ने एक और चेतावनी भी दी कि अब अगर किसी ने LPG गैस सिलेंडर को बेचा या किसी और को ट्रांसफर किया तो भी उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। भारत में LPG रसोई गैस की किल्लत और बढ़ती कालाबाजारी के बीच केंद्र सरकार की तरफ से सभी उपभोक्ताओं को ये सख्त निर्देश और गाइडलाइंस जारी की गई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मार्केट रेगुलेटर SEBI ने देश के निवेशकों को बड़ी चेतावनी दी और कहा कि अनाधिकृत वेबसाइटों पर गैर सूचीबद्ध शेयरों की खरीद फरोख्त से सावधान रहें। कई सारे ऐसे फर्जी वेबसाइट हैं जिनके ऊपर ट्रेडिंग के नाम पर बाय सेल होता है, तो ऐसे फर्जी वेबसाइटों को कभी विजिट ना करें और ऐसे प्लेटफॉर्म अवैध प्लेटफॉर्म से कोई भी ट्रेडिंग वगैरह ना करें। जो ऑफिशियली SEBI ऑथोराइज्ड ब्रोकरेज है उन्हीं के जरिए करें। ये निवेशकों को चेतावनी और सलाह दी है। और भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने भी सख्त आदेश जारी किया, कहा कि मोबाइल ऐप पर गलत क्लिक करवा कर अब बैंक लोन थमाने वाले बैंकों की खेड़ नहीं। इस बारे में भी नियम बदल दिए गए हैं और ये नए नियम तो 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। मैंने आपको कल ही इन नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी बताई थी। वहीं खबर आ रही है कि 20 जून को जारी होगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त। पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बटन दबाकर ये किस्त देश भर के करोड़ों किसान भाई लोगों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। और खबर देखिए, अयोध्या में रामलला को लगा दुनिया के सबसे महंगे आम का भोग। इस आम की 1 किलो की कीमत 3 लाख रुपए तक प्रति किलो होती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ये काफी स्पेशल किस्म है, जापान का मशहूर आम है मियाजाकी। इसका भोग लगाया गया रामलला को। और कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए दोस्तों, तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई ने कहा कि 14 सितंबर को वो अपनी खुद की पार्टी घोषित करेंगे और टीम में 50 साल से कम उम्र के ही सदस्य होंगे। वी द लीडर आंदोलन चला रहे हैं अभी वो, बीजेपी से अलग हो चुके हैं और अब उन्होंने खुद की पार्टी बनाने की घोषणा की है। वहीं इधर महाराष्ट्र की राजनीति में भी ऑपरेशन टाइगर से मची उथल फुथल। उद्धव के सांसदों की मीटिंग बुलाने के बाद से अब तक काफी कॉन्ट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में उद्धव की पार्टी टूटी, राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गालियां भी दी। 9 में से 6 सांसद बागी बने। 4 साल पहले शिंदे 39 विधायकों के साथ अलग हुए थे, लेकिन अब महाराष्ट्र की राजनीति में ये बड़ी उथल फुथल देखने को मिल रही है, बंगाल के टीएमसी की ही तरह। क्योंकि शिवसेना यूबीटी से पहले आम आदमी पार्टी और टीएमसी में भी भारी टूट देखने को मिली है। आम आदमी पार्टी के भी कई सांसद अलग हो गए हैं, आपको पता होगा। और पश्चिम बंगाल में भी अभी चुनावी नतीजों के बाद टीएमसी पूरी तरीके से बिखर गई। पश्चिम बंगाल में तो अब ममता बनर्जी के भतीजे की भी गिरफ्तारी हो सकती है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अरेस्ट वारंट पर लगी रोक को हटा दिया। उन्होंने मंत्री विजय वर्गीय के बेटे को गुंडा भी कहा था। वहीं खबर है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ भी विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी हुआ, क्योंकि उनके ऊपर पीएम पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। और यूपी में देखिए केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा हमला, बोले कि सपा के 25-26 सांसद टूटने के लिए तैयार हैं, 2027 में होगा तृणमूल जैसा हाल। और कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने भी अब दिल्ली के जंतर मंतर में एक बार फिर से प्रदर्शन के लिए अनुमति मांगी। 20 जून से वापस धरने की तैयारी कर रही है सीजेपी। वहीं छत्तीसगढ़ की यह बड़ी घटना देखिए, एक भाजपा नेता को फॉर्च्यूनर में जिंदा जला दिया, उनके साथ 3 मौतें हो गई। राजनीति में किस किस तरह की गंदी हरकतें देखने को मिल रही है देखिए आप। तो ये तो कुछ पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा, और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, भारत के ऊर्जा क्षेत्र में नई क्रांति शुरू होगी। मुंबई में रोड शो आयोजित करेगा मंत्रालय। कोयला मंत्रालय की तरफ से यह प्लान है। 46,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत होगी। और वहीं भारतीय रेलवे ने भी गुजरात के कच्छ में 493 करोड़ की आदिपुर भुज डबलिंग परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिससे कच्छ में रेल संपर्क और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया अणुव्रत क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट 2026 के पोस्टर का लोकार्पण। और हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम में दिए नए निवेश के विकल्प, अब कर्मचारी अपनी मर्जी से लेंगे मार्केट का जोखिम। तो कर्मचारियों के लिए हरियाणा सरकार की नई पहल। ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, किया की नई सोनेट की भारत में टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। 2027 तक कंपनी लॉन्च करने का प्लान कर रही है। और जो हाल ही में मारुति कंपनी ने पूरे फ्लेक्स फ्यूल से चलने वाली वेगनार कार जो लॉन्च की थी, उसको भी अब तक 13 डिलीवरी कर दी है, कंपनी का कहना है। और एक बड़ी चेतावनी देखिए, टेलीग्राम के जरिए फैल रहा नया साइबर खतरा। अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी FBI की तरफ से यह चेतावनी दी गई और कहा कि स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट 365 के यूजर्स सतर्क हो जाएं। टेलीग्राम के जरिए आजकल साइबर फ्रॉड साइबर क्राइम भी बढ़ रहे हैं, तो सावधान रहिएगा। इस तरह के बग और वायरस को लेकर यह चेतावनी जारी हुई है। वहीं खबर देखिए, पीएम मोदी के विशेष विमान में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ की अधूरी छवि दिखने को लेकर राजस्थान के डूंगरपुर की 13 साल की लड़की ने बड़ी चूक पकड़ी और पीएमओ को लेटर लिख करके इन्होंने सुझाव भी दिया। दरअसल बात कुछ यूं है कि अभी जो पीएम मोदी अपने स्पेशल विमान से विदेश दौरे पर गए, तो यहां मोदी के विमान पर जो ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लगा हुआ है, तो विमान का गेट खुलने के बाद ये प्रतीक चिन्ह थोड़ा सा ढक जाता है, मतलब आधा सा कट जाता है। तो इसी चूक को पकड़ा ये राजस्थान की डूंगरपुर जिले की छोटी सी गुड़िया 13 साल की छात्रा किम भारतीय ने, और इन्होंने पीएम को लेटर भी लिखा। इस बारे में कल डिटेल जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में बताई थी, अगर आप देखना चाहते हो दिलचस्प खबर तो देख लीजिएगा। और अगली बड़ी खबर देखिए, ISI से जुड़े एक और आतंकी मॉड्यूल के 5 और आरोपी अरेस्ट हुए हैं। इनको पुलिस कर्मियों को निशाना बनाने का टारगेट दिया गया था। पिछले 2 दिन के अंदर अंदर अब तक 12 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जो हमारे देश में बड़ी आतंकी साजिश की प्लानिंग कर रहे थे। ऐसे देशद्रोहियों को तो फांसी पर लटकाना चाहिए यार, सच में। देखिए हमारे देश में रहकर ये गद्दारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तो जीने का कोई अधिकार नहीं है। और अगला अपडेट देखिए, भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हुआ। 1 साल के अंदर अंदर 15.5% तक बढ़ा। रक्षा मंत्रालय ने हथियारों की सफलता के बारे में भी बताया। भारत के डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर ये रक्षा मंत्रालय की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। ये रिपोर्ट्स बता दें कि भारत को रक्षा क्षेत्र में बड़ी कामयाबी मिली है और डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा मिला है। चलिए खबर है, अगले महीने 4 जुलाई को उत्तराखंड पहुंचेगा कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था। हर दल में 50 श्रद्धालु होंगे। होटल स्टे खाने से लेकर हर व्यवस्था संभालेगा KMVN। वहीं देखिए बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान कई रेलवे स्टेशनों पर उमड़ी छात्रों की भीड़। कई जगहों पर ट्रेनों में बच्चों को जगह तक नहीं मिली। फर्जीवाड़े के आरोप में भी 39 लोग पकड़े गए। और हमारे देश के पहाड़ी राज्यों को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि उत्तराखंड और हिमाचल के 17 गांव डूबेंगे तो 6 राज्यों को फायदा होगा। किसाऊ परियोजना पर सहमति बनी, अब कैबिनेट की मंजूरी मिलने का इंतजार है। ये जो परियोजना सरकार लाने जा रही है, इसको लेकर ये रिपोर्ट और डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं खबर देखिए, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को टेंशन देता है। 5 प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर 5 लाख करोड़ खर्च होता है, इतना 5 मंत्रालयों का बजट होता है। बीते दिन राजस्थान के कोटा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने छात्रों की आवाज उठाते हुए ये देशव्यापी आंदोलन शुरू किया, जिसमें नीट, जेईई, सीबीएसई, पेपर लीक समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। और खेल जगत से भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों, भारत की विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत हुई, नीदरलैंड को 95 रन से हराया, मंदाना और सेफाली की 50 भी देखने को मिली, श्री चरणी को 4 विकेट मिले। मेनी कॉन्ग्रेट्स महिला टीम इंडिया की सभी खिलाड़ियों को। और भारत की पुरुष क्रिकेट टीम पर भी अच्छी खबर आई, भारत ने अफगानिस्तान को 170 रन से हराया, दूसरा वनडे जीतकर सीरीज भी अपने नाम कर लिया। गिल और किशन के शतक देखने को मिले, अर्शदीप और गुरनूर को 3-3 विकेट भी मिले। और इंडिया ए ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंच चुकी है अफगानिस्तान को हराने के साथ ही। चलिए अगला अपडेट देखिए, राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा ऑडिट, पॉक्सो पालन में लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्यवाही होगी, दिल्ली के एलजी की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए गए इस बारे में। और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा ऐलान किया, बोले कि अगले 10 साल में भारत में आएगा बड़ा बदलाव, एआई डेटा सेंटर्स पर अश्विनी वैष्णव ने यह दावा करते हुए कहा कि बदलेगा भारत का भविष्य। अच्छा, पीएफ खाता वालों के लिए भी अच्छी खबर है, अब जल्द ही आप यूपीआई और एटीएम से भी निकाल पाएंगे अपने पीएफ का पैसा, ईपीएफओ 3.0 जल्द ही लॉन्च होने जा रहा। हालांकि वैसे तो ईपीएफओ की तरफ से अभी तक कोई इसकी आधिकारिक लॉन्चिंग की तारीख की घोषणा नहीं किया, लेकिन सरकार ने संकेत दिए कि जल्दी इसे रोल आउट कर दिया जाएगा क्योंकि इसका ट्रायल भी सफल हो चुका है। तो ये ईपीएफओ 3.0 सिस्टम लागू होने के बाद अपने पीएफ खाते के पैसों को आप इजीली क्विकली विड्रॉ कर पाएंगे यूपीआई और एटीएम के जरिए भी, है ना। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, एक तो मानसून को लेकर मौसम विभाग का कहना कि अभी से ही मानसून कमजोर होने लगा हमारे देश में, 40% हिस्सों में बारिश की कमी देखने को मिल रही है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, इन सभी राज्यों के ऊपर से मानसून के बादल गायब है। सैटेलाइट की तस्वीरों में यह बड़ा खुलासा सामने आ रहा, पिछले 7 दिन से सप्ताह भर से मानसून जो है वो तेलंगाना में ही अटका हुआ है, देश के अन्य राज्यों तक मानसून पहुंच ही नहीं रहा अभी तो, और ज्यादा लेट हो रहा है ऐसा। बाकी प्री मानसून बारिश की गतिविधियों की कुछ खबरें देखिए आप, मध्य प्रदेश के भोपाल समेत 4 जिलों में बारिश हुई, 33 जिलों में अभी भी अलर्ट है, इंदौर में हवाएं चली, कई जगहों पर पानी भी भरा, लेकिन जून महीने में 35% तक कम बारिश देखने को मिली एमपी में। हालांकि आज भी 18 जून को मध्य प्रदेश के कुछ उत्तरी और दक्षिणी जिलों में बारिश का अलर्ट है। वहीं राजस्थान में देखिए, उदयपुर में बारिश हुई, एक जगह तो स्वागत द्वार गिरने से स्कूटी और कार भी दब गई, कई बड़ी दुर्घटनाएं भी देखने को मिली तेज आंधी तूफान की घटनाओं में। बाकी राजस्थान में आज 18 जून को आधे से ज्यादा राजस्थान के जिलों में ऑरेंज और कुछ जिलों में येलो अलर्ट रहेगा, कल 19 जून को भी आधे राजस्थान में बारिश की चेतावनी है। और बिहार में देखिए दोस्तों, अररिया में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, मुजफ्फरपुर, लखीसराय समेत 12 जिलों में तेज बारिश देखने को मिली, मधुबनी में तेज आंधी भी चली, अभी भी बिहार के 26 जिलों में अलर्ट जारी है, इन जिलों में बिहार में बारिश की चेतावनी है। हरियाणा के भी 17 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ, पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा, मौसम विभाग ने किसान भाई लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी की है। और पंजाब के भी 16 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी, पहाड़ों पर बरसात की वजह से भाखड़ा डैम का जल स्तर भी बढ़ा है। तो देखा जाए तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत देश के 21 राज्यों में आंधी तूफान और भारी बारिश की चेतावनी है, तो इस वजह से मौसम विभाग का कहना है कि लोगों को भीषण गर्मी और उमस से जरूर राहत मिलेगी। बाकी पहाड़ी राज्यों में भी स्थिति देखिए, उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश की चेतावनी, मैदानी इलाकों में तापमान 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। और हिमाचल प्रदेश में भी देखिए, भारी बारिश देखने को मिली, सड़कें जलमग्न हुई, अगले 72 घंटे हिमाचल के कई जिलों में ओलावृष्टि और तूफान का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी और गोरखपुर में बारिश देखने को मिली, लखनऊ में उमस भरी गर्मी भी बढ़ी, अगले कुछ घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में आंधी बरसात का अलर्ट रहेगा। अभी बिहार बॉर्डर पर मानसून अटका हुआ है, तो इसलिए यूपी में मानसून भी थोड़ा लेट पहुंचेगा। झारखंड में भी 3 डिग्री तक बड़ा तापमान, रांची समेत 6 जिलों में आज बारिश के आसार रहेंगे। बाकी अगले 2 दिन आज 18 जून और कल 19 जून को देश भर के अलग अलग राज्यों में मौसम की स्थितियां कैसी रहेगी देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। वैसे दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं और आपके यहां मतलब अभी मौसम के हाल क्या चल रहे हैं, बारिश वगैरह हो रही है या मतलब गर्मी पड़ रही है, कमेंट करके बताएगा आपके राज्य और जिले का नाम। चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में, कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में थोड़ी तेजी देखने को मिली, सेंसेक्स 347 अंक चढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, निफ्टी भी 97 अंक की बढ़ोतरी पर रहा। वहीं खबर है, फोक्सवैगन ग्रुप की कंपनी के साथ एचसीएल टेक की बड़ी डील हुई, कारों के लिए अब एआई सॉफ्टवेयर बनाएगी ये कंपनी। और देखिए, मात्र 25 साल के अमन 52,000 करोड़ रुपए के मालिक बने, एमआईटी छोड़कर 4 साल में इन्होंने एआई कोडिंग प्लेटफॉर्म बनाया था कर्सर, जिसको इलोन मस्क अमेरिकी स्पेसएक्स कंपनी ने 5.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा में खरीदा है। तो ये भारतीय मूल के कर्सर के को फाउंडर रहे हैं। अमेरिका में इनका जन्म हुआ, लेकिन बहुत ही कम उम्र में इन्होंने इतनी अच्छी सफलता पाई है। 4 ड्रॉपआउट्स ने मिलकर ये कर्सर की पेरेंट कंपनी एनिस्पियर बनाई थी। वहीं भारत के एक और शख्स ने परप्लेक्सिटी एआई जो बनाया, उनके सीईओ अरविंदर श्रीनिवास ने भी गुरुमंत्र दिया। वो बोले कि एआई के दौर में आइडिया खोने के डर को फ्यूल बनाए तो आप सीट्स पर बने रहेंगे। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि एआई से जुड़े 70% फास्ट ट्रैक कोर्स जो है वो सिर्फ धोखा है, फर्जी है। जबकि नौकरियां केवल उन्हीं लोगों को मिल रही है जिनके पास लाइव डिप्लॉयड पब्लिक प्रोजेक्ट्स का पोर्टफोलियो मौजूद है। तो एआई के आलतू फालतू कोर्स ना करें, इसके बजाय खुद प्रैक्टिकल सीखें और अपना पोर्टफोलियो बनाएं ऐसा। और एक बड़ी इंटरनेशनल डील देखिए, $2.7 अरब में बिकेगी दुनिया के मशहूर पिज्जा चेन पिज्जा हट भी। और गोल्ड बाइंग पर भी रिपोर्ट आ रही है कि दुनिया के केंद्रीय बैंक खरीदेंगे अभी और सोना। कीमतों में तेज उछाल भी देखने को मिल सकता है इस वजह से। वैसे सोना चांदी की बात हो ही रही तो लेटेस्ट अपडेट भी देख लीजिए आप। बीते दिन चांदी में 744 रुपए की मामूली गिरावट देखने को मिली और अभी चांदी का भाव 2,48,000 रुपए प्रति किलो चल रहा है। 10 ग्राम सोना भी 558 रुपए सस्ता होकर अभी 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। मतलब ये 24 कैरेट प्योर गोल्ड का रेट है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगला अपडेट, उत्तराखंड के हरिद्वार में 5,000 किलो से भी ज्यादा के पारद शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की गई। 10 साल की रिसर्च के बाद ये विशेष शिवलिंग तैयार किया गया। और वहीं राजस्थान के जैसलमेर में आर्टिफिशियल तरीके से एक और गोडावण का जन्म हुआ। ब्रीडिंग सेंटर में अब इनकी संख्या बढ़कर 94 हो चुकी है। 9 करोड़ से टनल बन रही है। चलिए खबर है हरियाणा के रेवाड़ी में टैक्सी और ट्रांसपोर्ट गाड़ियों में अब जीपीएस अनिवार्य होगा। यात्रियों का वेरिफिकेशन भी जरूरी होगा। जिला प्रशासन की तरफ से सख्त निर्देश जारी किया गया। और कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों, बहुत ही दुखद खबर है। एक बड़ा बस हादसा हो गया, खड़े ट्रक में जा घुसी स्लीपर बस, 7 यात्रियों की मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि कटर से काट कर गाड़ी में फंसे यात्रियों को निकाला गया। गुजरात के वडोदरा शहर में ये हादसा हुआ जिसमें 9 साल के बच्चे समेत 7 लोगों की मौत हो गई। ये हादसे की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिस ट्रक से बस टकराई उसमें भरा सामान कट्टे वगैरह भी बिखर गए। वहीं उत्तर प्रदेश के बदायूं में भी ट्रैक्टर और ई रिक्शा की भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। पीएम मोदी और सीएम योगी ने भी इस घटना पर दुख जताया। चलिए कुछ अंतरराष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए। चीन को लगा बड़ा झटका, 3 साल में चाइना की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था पर बड़ा गहरा संकट मंडरा रहा, ये लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं अमेरिका की ट्रंप सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया और इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदल दिया है। अमेरिका ने सबसे बड़े सैन्य कमांड से इंडो सब को हटा दिया। चीन के खिलाफ भारत को अहमियत देने के लिए ट्रंप ने ही बदला था यह नाम, लेकिन अब यह नाम वापस हटा दिया गया है। और खबर है भारत के बेने मेनासे समुदाय को इजराइल लाएगी वापस नेतन्याहू सरकार। वहीं ईरान अमेरिका जंग पर भी अपडेट आ रहा कि शांति समझौते को लेकर अंतिम बातचीत जल्द ही शुरू होगी। ईरानी विदेश मंत्री अराग्ची ने कहा कि युद्ध का तुरंत और स्थायी अंत समझौते का सबसे बड़ा मुद्दा है। ट्रंप ने भी कहा कि ईरान के शांति समझौते पर जल्दी मोहर लगेगी, कल शुक्रवार तक समझौता फाइनल हो सकता है। और अभी रिपोर्ट सामने आ रही है कि ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी को भी हटा दिया गया है। हालांकि ये समझौता कैंसिल भी हो सकता है, तो कई सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौता एक बड़ी राहत की बात जरूर है, लेकिन असली परीक्षा अभी भी बाकी है। और वहीं देखिए यूएन संयुक्त राष्ट्र में भी उठी ग्लोबल साउथ को प्रतिनिधित्व देने की मांग, चीन ने भी इसकी वकालत की। और ईरान युद्ध के बाद अब दुनिया की नजर यूएस फेड के फैसलों पर है। देर रात जो ब्याज दरों पर फैसला आएगा, इसका असर आज भारतीय स्टॉक मार्केट पर भी देखने को मिल सकता है। और वहीं अमेरिका ईरान की इस जंग पर एक रिपोर्ट आ रही कि भारत के लिए भी ये एक आत्ममंथन का समय है। कई सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो अभी पश्चिम एशिया का संकट चला, इससे भारत को सबक लेना चाहिए और भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीतियों पर पुनर्विचार करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर, हमारे देश के छोटे हवाई अड्डों पर अब सख्ती बढ़ाई जाएगी। डीजीसीए ने सुधार के कड़े निर्देश दिए और कहा कि सुरक्षा से बिल्कुल समझौता नहीं होगा। हवाई यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार के उड्डयन नियामक की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए गए। और खबर आ रही कि केंद्र में पदोन्नति के लिए आरक्षित रिक्तियों को गैर आरक्षित करने के नियमों में संशोधन किया जाएगा, बदलाव होगा। अगले एक महीने में यह बदलाव करना होगा। इस बारे में केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों को निर्देश भी जारी किए गए। और भारत में शिक्षा पर रिपोर्ट आ रही कि शिक्षा खर्च बढ़ाने की जरूरत है। संसदीय समिति ने कहा कि बजट का आवंटन पर्याप्त नहीं है। एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का 6% जीडीपी लक्ष्य अभी भी अधूरा है। वहीं साइबर अपराधी पर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ। सीजीआई ने आरोपियों को बताया परजीवी, समाज और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा माना है। और खबर है एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना 2041 के तहत 4 ग्रीनफील्ड शहर विकसित किए जाएंगे, ये भी केंद्र सरकार ने नया प्लान बनाया है। और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कैबिनेट बैठक में 29 बड़े फैसले लिए गए। खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिलेगी, जमीन खरीद बिक्री पर भी राहत दी है, होम स्टे योजना को भी मंजूरी दे दी गई है। बिहार के पटना समेत 6 शहरों में 400 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने का रास्ता भी साफ हो चुका है। और बिहार के 60 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ मिलेगा। सम्राट चौधरी और शिवराज सिंह चौहान के साथ में ये बैठक हुई जिसमें बड़ा ऐलान किया गया। वहीं बिहार में विजिलेंस टीम की भी ताकत बढ़ी। अब बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकेंगे SVU इंस्पेक्टर। ये बिहार सरकार ने स्पेशल राइट्स दिए इनको। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप अगली खबर, दिल्ली में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। हर स्कूल का होगा पॉक्सो ऑडिट और बनानी होगी चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी भी सभी स्कूलों को। उपराज्यपाल एलजी ने सख्त निर्देश जारी किया है। और टेक न्यूज से खबर देखिए, एक बार पढ़ते ही गायब हो जाएंगे व्हाट्सएप मैसेज, जल्द ही आ सकता है नया व्यू वंस टेक्स्ट फीचर भी। जैसे व्हाट्सएप पर अभी व्यू वंस इमेज फीचर है ना, वैसे ही टेक्स्ट मैसेज के लिए भी व्हाट्सएप ये फीचर लाने का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, बिहार के रजत का दुनिया में बजा डंका। ब्रिटेन की संस्था ने दिया यंग इंस्पायरिंग फार्मासिस्ट 2026 का सम्मान। ये पटना के हैं जिन्होंने पूरे भारत का दुनिया में नाम रोशन किया। मैंने मैनी कांग्रेट्स इनको। और टेक जगत से खबर है, गूगल ने रोल आउट किया एंड्रॉइड 17 का स्टेबल अपडेटेड वर्जन। तो आप भी अपने फोन को अपडेट कर सकते हैं, इसमें कई नए एडवांस फीचर मिलेंगे आपको। और खबर है, जम्मू की सड़कें भी अब गड्ढा मुक्त होगी। 1 करोड़ से भी ज्यादा की AI मशीन से 15 मिनट में चमकेगी रोड। ट्रैफिक जाम से भी मुक्ति मिलेगी। जम्मू नगर निगम की तरफ से ये नई पहल की जा रही है। और अमरनाथ यात्रा के बाद हो सकता है पंचायत निकाय चुनाव का ऐलान। जम्मू कश्मीर में मतपत्र अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में छापने पर भी मंथन कर रहा SEC। वहीं राजधानी दिल्ली के हर जिले में बनेगा महिला थाना और DTC बसों में भी तैनात होगी होम गार्ड मार्शल। पॉक्सो पर एलजी ने ये एक और बड़ा फैसला सुनाया। और हरियाणा के झज्जर को भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ी सौगात दी। 75.37 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में है एशिया का सबसे बड़ा कबाड़ी मार्केट। हर साल 6,000 करोड़ का सोना निकलता है इस कबाड़ से। US, चीन, यूरोप तक आयात निर्यात होता है। पश्चिमी दिल्ली का मायापुरी बाजार एशिया का सबसे बड़ा स्क्रैप मार्केट है। और एक रिपोर्ट आ रही कि भारत में मोबाइल डेटा खपत भी दुनिया में अभी सबसे ज्यादा है। साल 2031 तक 1.1 अरब के पार होंगे भारत में 5G इंटरनेट यूजर्स। वहीं खबर है, झारखंड में सिपाहियों को अब बिना शर्त मिलेगा ACP का लाभ। हाईकोर्ट ने खारिज की सरकार की अपील। ACP यानी अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन का लाभ प्राप्त करने के लिए ट्रेनिंग पूरी करने या इस तरह की जो बाध्यता थी उसको कोर्ट ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। वहीं झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य को जोड़ने वाली रेल लाइन का भी रास्ता साफ हुआ। केंद्र सरकार ने स्पेशल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया इसको। 250 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी रेलवे लाइन बिछाई जाएगी इस रूट पर। और नीट अभ्यर्थियों को बस किराए में 50% की छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की है। वहीं खबर देखिए, नई दिल्ली से दुनिया तक पहुंची पीडिया कला। GI टैग से नया सम्मान मिला इसको। और रेलवे दुर्घटनाओं पर भी अब लगाम लगेगी। झारखंड धनबाद से लेकर बिहार गया तक रूट में अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा कवच 4.0 लगाने का काम। इंडियन रेलवे की तरफ से ये अपडेट जारी किया गया। और हिमाचल घूमने जाने वालों के लिए भी अच्छी खबर है। मनाली हाईवे पर अब जाम नहीं लगेगा। जिया चौक में नया फ्लाईओवर भी बनाया जाएगा। और दिल्ली NCR के चारों राज्यों में बनेगी एक एक नमो सिटी। NCR में लगने वाले प्रतिबंध से राहत मिलेगी। दायरे में कोई परिवर्तन भी नहीं होगा। ये भी केंद्र सरकार का प्लान है। चलिए यूपी के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। यमुना किनारे बनेगा 31 किलोमीटर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे। नोएडा एयरपोर्ट तक अब नहीं होगा ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना। और यूपी गोंडा से लेकर लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, प्रयागराज के लिए स्पेशल इलेक्ट्रिक बसें भी शुरू होने जा रही, जिससे यात्रियों को गर्मी से भी राहत मिलेगी। AC बसें होगी। और बुंदेलखंड की रेल कनेक्टिविटी को भी नई रफ्तार मिलेगी। जल्द ही 18 किलोमीटर का खेरार अकोना रेल सेक्शन काम पूरा किया जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों 20 जून को उड़ीसा राज्य के दौरे पर रहेंगे। और अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए, उत्तर भारत में मिला खतरनाक परजीवी का नया स्वरूप, जिससे इंसानों में संक्रमण का खतरा भी बढ़ा है। उत्तर भारत में भेड़ों और बकरियों में वैज्ञानिक अध्ययन में ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है। और आपकी हेल्थ को लेकर एक अच्छी खबर है, IIT मद्रास ने तैयार किया ब्रेन स्टेम एटलस एंकर, जिससे रोगों के कारणों को समझने में आसानी होगी। वहीं खबर है, भारत के रक्षा क्षेत्र के कर्मियों की भी बड़ी जीत हुई। सेवानिवृत्ति तक अब मानित प्रतिनियुक्ति का तोहफा मिलेगा। उन्हें समावेशन पैकेज भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने ये मंजूरी दे दी फाइनली। और खबर है, यमुना को मिलेगा नया जीवन। किसाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बनी। केंद्र सरकार इसके लिए 90% तक मदद देगा। वहीं तेलंगाना सरकार ने केंद्र सरकार से अपील की है कि फंड जारी करने में और देरी न करें। हैदराबाद मेट्रो फेज 2 के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार से फंड मांगा। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए आप। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में श्री सांवलिया जी के भंडार से निकले 25 करोड़ 81 लाख रुपए। वहीं छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा फेरबदल किया गया। 61 इंस्पेक्टर्स के तबादले यानी ट्रांसफर किए गए। राजधानी दिल्ली में अब एक ही जगह मिलेगी सरकारी सेवाएं। 18 से 42 स्थानों पर लगेंगे जन कल्याण शिविर। 18 से 20 जून तक ये शिविर आयोजित होंगे। और उत्तराखंड की साक्षरता दर 98% के पार पहुंची। देश का 6ठा पूर्ण साक्षर राज्य बनने की दहलीज पर पहुंचा उत्तराखंड। चलिए कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए सरकारी नौकरी पर अपडेट है। दिल्ली में टीचिंग और नॉन टीचिंग के 1979 पदों पर भर्ती निकली हुई है। 100 रुपए फीस में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट रहेगी 15 जुलाई 2026। और यूपी SSSC लोअर PCS के लिए आवेदन की अंतिम तारीख को भी 25 जून तक के लिए बढ़ा दिया यूपी सरकार की तरफ से। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सिंह और कुंभ राशि वालों की इनकम बढ़ने के योग है। धनु राशि वालों की नई डील हो सकती है और वृश्चिक राशि वालों को ट्रांसफर की खबर भी मिल सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं।
इस ऑडियो को पसंद करने के लिए और आगे भेजने के लिए 5 दबाएं। इसका ऑडियो ID नंबर आपको SMS कर दिया जाएगा।